भागवतसार की श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय पर चर्चा है, तो इसका 10वां श्लोक इसको दोहराएंगे फिर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद भीक्षणम् अतृप्तनं शुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद भीक्ष्णनम् अतृप्तनं क्षुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद भीक्षणम् अतृप्तनं क्षुल्ल सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतौघात उच्चतर अवरेशाम इन निम्नतरों का भगवन् हे प्रभु व्रतानि वृत्तियां श्रुतानि सुना हुआ मैं मेरे द्वारा व्यास व्यास के मुखात मुँह से अभीक्षणम बारंबार अतृप्तनुम मैं तुष्ट हूँ क्षुल्ल अल्प सुख आवाहनम सुख लाने वाला तेषाम उनमें से रिते बिना कृष्ण कथा भगवान कृष्ण विषयक बातें अमृत ओघात अमृत से अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा हे प्रभु मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं कम और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तात्पर्य, क्योंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः श्रील व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री है और इनकी रचना उनमें इस ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोगों में ईश भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं, क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठकों को स्वतः पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतया तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान कृष्ण विषयक दिव्य कथाएँ सुनने के लिए लालायित थे, चूँकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएँ अपर्याप्त थीं, अतएव वे तुष्ट ना हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएँ दिव्य हैं और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवद गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में हों। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। यह सारा जगत वैकुंठ में परिणत हो जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाएं। संसार में दो महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं प्रचलित हैं, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत। भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा, जबकि श्रीमद् भागवत इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हरेक को भौतिक कलमश से शुद्ध बना सकती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो कल चौथे अध्याय पर चर्चा हुई थी कि किस प्रकार उद्धव आगे वर्णन करते हैं कि कैसे यदुवंशियों का नाश हुआ और फिर मैत्रेय मुनि के पास विदुर को भेज देते हैं। जब विदुर उनसे प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब इस अध्याय के प्रारंभ में मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में गंगा का जो द्वार है जिसे हरिद्वार कहते हैं, तो वहाँ पर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि को मिलने के लिए विदुर जी आते हैं। तो पहले 9 श्लोकों में उनके प्रश्न हैं। पहले श्लोक में तो केवल वर्णन किया गया कि मैत्रेय मुनि के पास आए, फिर दूसरे श्लोक से विदुर जी ने प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। तो विदुर जी ने कई प्रश्न पूछे, करीब 9 श्लोक तक उन्होंने ऐसे साधारण प्रश्न पूछे, साधारण अर्थात जो सीधे कृष्ण से संबंधित नहीं थे। जैसे उन्होंने पूछा कि जीवों के लिए सच्चा सुख क्या है, यहाँ सब जीव इस भौतिक जगत में सुख की कामना के लिए पड़े रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो इसलिए बताइए कि सच्चा सुख क्या है, किसके कारण उन्हें सच्चा सुख मिल सकता है। और फिर विदुर वर्णन करते हैं कि ये अगर सच्चा सुख पाने के लिए शुद्धता आवश्यक है तो शुद्धता हृदय में कैसे आ सकती है, इसका वर्णन कीजिए। और फिर भगवान के अवतारों के विषय में जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, क्रीडन विधत्ते द्विजगो सुराणा क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वताम् न सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। वो कहते हैं कि अब आप मुझे भगवान के अलग अलग अवतारों का, अवतार भेदे, उनका वर्णन बताइए। क्यों? क्योंकि इसको सुनकर कभी मन तृप्त नहीं होता। मनो न तृप्त्यत्य शृण्वताम् न सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। भगवान की कथाओं को सुनकर कभी भी मन तृप्त नहीं होता, इसीलिए आप इनको बोलते जाइए। तो अलग अलग, और इसको सुनने से ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को सबको लाभ होगा, इसीलिए आप ऐसे प्रश्नों, इस ऐसे चीज़ों को कहिए। और फिर आगे वो पूछते हैं कि कैसे भगवान ये सृष्टि की रचना करते हैं, इसका भी वर्णन कीजिए। विशेष करके वो पूछते हैं महाविष्णु, कारणों दक्षाई के विष्णु के विषय में कि कैसे सृजन होता है। और फिर इस श्लोक से जो हम लोगों ने पढ़ा 10वां श्लोक, इससे लेकर करीब आगे 5 श्लोक, 16वें श्लोक तक विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि जो भी आप कहें वो कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण के संबंध में होना चाहिए, केवल कृष्ण की कथा कहिए। अर्थात आप चाहे जो भी वर्णन कर रहे हैं, बाकी चीजें मैं बहुत सुन चुका हूं। तो विदुर जी मंत्री थे, और ऐसा नहीं था कि केवल मंत्री रहते थे, आध्यात्मिक विषयों को भी बहुत सुना करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप केवल अब कृष्ण कथा सुनाइए, क्योंकि जो भौतिक चीजें हैं, तो कृष्ण कथा के महत्व को इन श्लोकों में वो कहते हैं, प्रश्न पूछते पूछते। देखिए, इसीलिए भक्तों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि भक्तों के प्रश्न से ही ज्ञान प्रकट हो सकता है। तो यहां पर विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछते हुए कृष्ण कथा के महत्व को कहते हैं कि क्या कृष्ण कथा का महत्व है। तो कुछ लक्षणों को देते हैं अपने इन प्रश्नों में। सबसे पहला लक्षण वो देते हैं कृष्ण कथा का, कि कृष्ण कथा का क्या महत्व है। वो कहते हैं कि बाकी अगर कोई और कथा है तो वो जीव को संतुष्ट नहीं करती, अर्थात केवल कृष्ण कथा ही जीव को संतुष्ट कर सकती है। क्यों नहीं बाकी कथाएं संतुष्ट करती हैं? इस भौतिक जगत की कथा, भोग की कथा, इस ब्रह्मांड की कथा, देवताओं की कथा, वो क्यों जीव को संतुष्ट नहीं करती है? क्योंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर अनित्य दास, और दास को केवल अपने स्वामी की कथा संतुष्ट कर सकती है। तो इसीलिए विदुर जी पहला लक्षण देते हैं कृष्ण कथा का कि बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो कभी भी जीव को संतुष्ट नहीं कर सकती। और इसीलिए वो कहते हैं कि व्यासदेव ने महाभारत की रचना की जिससे जो भी ये जीव हैं जो अलग हो चुके हैं भगवान से, विमुख हो चुके हैं, उनको भगवान की ओर आकर्षित कर सकें। ये उद्देश्य था महाभारत कथा का कि वो भगवान की ओर आकर्षित करना चाहते थे, तो इसीलिए महाभारत की रचना उन्होंने की। और तीसरा गुण वो देते हैं कि महाभारत या कृष्ण कथा से हृदय में भौतिक चीज़ों के लिए अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब तक हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं तब तक भौतिक चीज़ों से आसक्ति बनी रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि अब केवल आप कृष्ण कथा सुनाइए क्योंकि इससे हृदय में भौतिक आसक्ति चली जाती है। और चौथा लक्षण कृष्ण कथा का देते हैं कि ये कृष्ण कथा ही केवल सारे जीवों के लिए सबसे शुभ चीज़ है। हम लोग सब शुभ चीज़ अच्छी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ जीवों के लिए, सबसे शुभ चीज़ या सबसे श्रेय करने वाली चीज़ केवल कृष्ण कथा है। तो ऐसे करीब 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक वो वर्णन करते हैं। फिर 17वें श्लोक से मैत्रेय मुनि धन्यवाद देते हैं। 17वें श्लोक से करीब 21वें श्लोक तक हम लोग देखते हैं कि मैत्रेय मुनि धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने अच्छे प्रश्न किए। पहले तो उनका आदर करते हैं विदुर का, और फिर विदुर को धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करते हैं विदुर के प्रति कि बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए, ये सभी जीवों के लिए और मेरे लिए भी लाभदायक हैं क्योंकि इनका जो उत्तर होगा वो सबको लाभ देगा। तो वो धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि किस तरह से आपने जो कहा है, अपने प्रश्नों को जो आपने कहा है वो सभी जीवों के कल्याण के लिए है। तो जो साधु होते हैं या जो भक्त होते हैं उनके सारे कार्य सभी जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। जब भक्तों की बात की जाती है तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों के कुछ गुणों को कहते हैं, ऐसे भक्त जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं भक्ति के, उनके कुछ गुणों को कहते हैं। जैसे एक गुण वो कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, कि ऐसा भक्त कभी समय बर्बाद नहीं करता, अव्यर्थ कालत्वम। और ऐसे कई गुणों को कहते हुए एक गुण कहते हैं कि वो सभी जीवों का हित चिंतक होता है, शुभ चिंतक होता, सभी जीवों के लिए शुभ या हित की बात सोचता है, ऐसा भगवान का भक्त होता है। तो इसलिए जब वो प्रश्न भी करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि सारे जीवों को लाभ मिले। अन्यथा विदुर जी पहले प्रश्न कर लेते हैं भौतिक जगत के विषय में, सृष्टि के विषय में, और फिर कहते हैं कि ये सब मैं सुन चुका हूं, इससे मैं संतुष्ट हो चुका हूं, अब कृष्ण कथा सुनाइए। तो फिर प्रश्न ही क्यों किया जब विदुर जी जानते थे, वो जानते थे कि उन्होंने ये जानबूझ के प्रश्न किया ताकि बाकी लोग जो सुने, और लोग जो सुन रहे हैं, आगे आने वाले जब लोग सुने तो उनको ज्ञान मिल सके, उनका हृदय शुद्ध हो सके। विदुर का हृदय तो शुद्ध था, वो केवल कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, लेकिन अन्य जीवों के लाभ के लिए उन्होंने इसको किया। तो जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनके सारे कार्य जीव के लाभ के लिए है। तो वो प्रश्न भी पूछते हैं तो जीव के लाभ के लिए। शौनक आदि ने जब प्रश्न किया पहले स्कंद के पहले अध्याय में, तो क्या प्रश्न किया, सभी जीवों के लिए शुभ सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है, कैसे इनका उद्धार होगा, कलयुग में क्या होगा, कृष्ण चले गए हैं तो धर्म को, धर्म ने कहाँ पर आश्रय लिया है इत्यादि। तो सभी जीवों के लिए वे इसको प्रश्न को करते हैं। तो इसलिए मैत्रेय मुनि ने धन्यवाद दिया उन्हें कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। और फिर 22वें श्लोक से मैत्रेय मुनि उनके उत्तरों को देना प्रारंभ करते हैं। 26 श्लोक तक वो मैत्री मुनि के उत्तरों को देना प्रारंभ करते हैं, अर्थात वे पुरुष अवतार का वर्णन करते हैं। पुरुष अवतार अर्थात महाविष्णु, जो फिर आगे अन्य दो पुरुष अवतारों में अपने आप को विस्तारित करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पुरुष अवतारों का वर्णन किया कि किस प्रकार महाविष्णु इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। तो कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ, कैसे सृष्टि होती है। अब ये वर्णन हम लोग संक्षेप में दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, जब हमने चर्चा की थी, ब्रह्मा जी ने बताया कि कैसे होता है, जिसको सर्ग कहा गया। लेकिन अब इन अध्यायों में आगे वही चीज़ विस्तार से समझाई जा रही है कि कैसे वो होता है। हमने संक्षेप में सुन लिया था कि महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, फिर प्रधान होता है, महत्तत्व आता है, फिर अन्य गुण आते हैं इत्यादि। तो अभी उसी चीज़ को बड़े विस्तार से इन अध्यायों में सिखलाया जाएगा कि वो कैसे होता है, उसका मूल कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि दृष्टि करते हैं, दृष्टि के द्वारा इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को गर्भस्थ कर देते हैं। गर्भस्थ अर्थात उसमें जीवों को प्रदान करते हैं, और फिर जब जीव उसमें आ जाते हैं तो आगे फिर वो वर्णन करते हैं कि कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है। तो 27वें श्लोक से लेकर वो सृष्टि का वर्णन करते हैं महाविष्णु के स्तर का। आप ये याद रखिए कि ये जो वर्णन अब आगे के अध्यायों में होगा ये सर्ग कहलाता है। सर्ग अर्थात प्रथम स्तर की, प्राथमिक स्तर की सृष्टि, महाविष्णु के स्तर की सृष्टि। तो फिर उसमें वह वर्णन प्रारंभ करते हैं कि कैसे महाविष्णु का दृष्टिपात होता है, फिर महत्तत्व आता है, फिर महत्तत्व से मिथ्या अहंकार प्रकट होता है। अब थोड़ा सा विस्तार, जो हमने पिछली बार नहीं सुना था, तो उसका वर्णन करते हैं कि महत्तत्व से फिर मिथ्या अहंकार प्रकट होता है, और ये मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण से मिलता है तो उस समय मन और देवता प्रकट होते हैं। यही मिथ्या अहंकार जब रजोगुण से मिलता है तो फिर इंद्रियां प्रकट होती हैं। यही मिथ्या अहंकार जब तमोगुण से मिश्रित होता है तो फिर तन्मात्राएं प्रकट होती हैं। तो ऐसा वर्णन वो करने लगे। तो हम लोगों ने पिछली बार केवल सुन लिया था कि इंद्रियां आई, तन्मात्राएं आई इत्यादि। तो अब उसको कैसे वो होता है, उसमें मिथ्या अहंकार मिश्रित होता है। तो अब देखिए, मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण से मिश्रित होता है तो फिर मन हमारा प्रकट होता है। तो मन भी मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है। तो ये जो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार जानते हैं, एक सच्चा अहंकार होता है और एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अर्थात झूठा, और सच्चा अहंकार यानी जो जीव की स्थिति है। तो सच्चा अहंकार क्या है जीव के लिए, मैं कृष्ण का दास हूं, ये सच्चा अहंकार है। और मिथ्या अहंकार क्या है, मैं ये शरीर हूं, मैं भोक्ता हूं। तो मैं दास हूं, ये सच्चा अहंकार है। मैं भोक्ता हूं, ये मिथ्या झूठा अहंकार है। मैं आत्मा हूं, ये सच्चा अहंकार है। मैं शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है। और ये मिथ्या अहंकार इस भौतिक जगत के हर स्तर पर है। जब रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से मिश्रित होकर अलग अलग चीजों को प्रकट करता है, जब रजोगुण से मिश्रित हो जाता है तो इंद्रियां प्रकट होती हैं। तो अर्थात हमारी इंद्रियां भी मिथ्या अहंकार से भरी हुई हैं। मन भरा हुआ है, इंद्रियां भरी हुई हैं। इसीलिए इंद्रियां केवल भौतिक चीजों को देखना चाहती हैं, भौतिक चीजों में आनंद लेना चाहती हैं। क्यों? मिथ्या अहंकार से भरी हुई, मोह से भरी हुई है। और यही मिथ्या अहंकार तमोगुण से मिलकर उन्हीं इंद्रियों के विषयों को प्रकट करता है जिनसे इंद्रियां आकर्षित होती हैं। तो देखिए, तीनों स्तर पर, मन हो, इंद्रियां हो, या इंद्रियों के विषय हो, तीनों में मिथ्या अहंकार भरा हुआ है। तो इस दृष्टि से ये जो कुछ भी हम देखते हैं वो केवल मिथ्या है, सत्य नहीं है। तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि ये जगत मिथ्या है, ये भौतिक जगत। सच्चा जगत आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक स्तर पर है। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया, और ये भी वर्णन किया कि मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण से मिलता है तो देवता प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने वर्णन किया कि कैसे पंच महाभूत आते हैं, इसको हम लोग सुन चुके हैं इसीलिए आज विस्तार से नहीं, लेकिन इन सब में एक चीज वो महत्वपूर्ण जोड़ देते हैं। जैसे हमने पिछली बार भी सुना था कि कैसे ध्वनि, ध्वनि से आकाश प्रकट होता है, फिर उसके बाद आकाश से ध्वनि के से फिर स्पर्श आता है जिससे वायु प्रकट होती है, फिर उसके बाद रूप आता है जिससे अग्नि प्रकट होती है, स्वाद आता है जिससे जल प्रकट होता है, फिर गंध आती है जिससे पृथ्वी प्रकट होती है। ये हम लोग सुन चुके हैं, तो इसी को फिर से कहते हैं। लेकिन इन सब में वो कहते हैं कि जब भगवान की दृष्टि होती है, अर्थात ध्वनि प्रकट होती है जिससे आकाश, और आकाश, और आकाश से जब स्पर्श मिश्रित होता है जिसको मिश्रण करते हैं भगवान की दृष्टि, तब फिर वायु प्रकट होती है। फिर वायु का जब मिश्रण होता है रूप से और भगवान की दृष्टि उसमें पड़ती है, तब अग्नि प्रकट होती है। और जब अग्नि का स्पर्श होता है स्वाद से, और स्वाद क्योंकि ये तो पहले ही प्रकट हो चुके हैं तन्मात्राएं, तो जब अग्नि का स्पर्श होता है स्वाद से और फिर भगवान की दृष्टिपात होती है, तब जल प्रकट होता है। और फिर जब जल का स्पर्श होता है गंध से और फिर भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है, तब पृथ्वी प्रकट होती है। तो ऐसे इन इनके सृष्टि का वो वर्णन करते हैं, और फिर करते करते वो वर्णन करते हैं कि जो देवता हैं जब वो प्रकट हो गए। अब ये कौन से देवता हैं इसको जानिए, ये हर ब्रह्मांड में रहने वाले देवता नहीं है अभी, क्योंकि अभी तक ब्रह्मांडों की रचना नहीं हुई है। ब्रह्मांड की रचना तो होगी, भगवान के महाविष्णु के शरीर से निकलेंगे और फिर उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई रूप के गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करेंगे और फिर उधर वहां के जो देवता उनको प्रकट करेंगे। लेकिन ये अभी कौन से देवता प्रकट हो गए, ये नियंत्रक देवता कहलाते हैं, कंट्रोलिंग डेमीगॉड्स। तो नियंत्रक देवता कहलाते हैं जो जिनसे जिनके विस्तार हर ब्रह्मांड में देवताओं के रूप में जाते हैं। तो ये देवता सब पहले प्रकट होते हैं ब्रह्मांडों की रचना के भी, अभी तो जल पृथ्वी ये सब आ रहा है उसी समय ये प्रकट हो गए। तो ये मूल देवताओं के मूल कहे जाते हैं, नियंत्रक देवता कहे जाते हैं। तो अब ये प्रकट हुए और इन्हें सृष्टि करनी थी आगे, लेकिन इनको कुछ पता नहीं था क्या होना है आगे, क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो मैत्री मुनि फिर अंतिम श्लोकों में, अर्थात 27वें श्लोक से लेकर 38 श्लोक तक, तो वो ये सृष्टि की रचना कैसे हुई इसको सब बता देते हैं। लेकिन फिर 39वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक, 51 श्लोक तक, देवताओं की प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं इन देवताओं की जो उन्होंने भगवान के चरण कमलों के प्रति की है। भगवान के चरण कमल भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो हमें इन पर ध्यान करना चाहिए। विशेषतः भगवान के चरणों में जो चिन्ह हैं उन पर ध्यान करना चाहिए। जब हम जप करने का प्रयास करते हैं तो भगवान के चरणों में कई चिन्ह हैं। भगवान के सीधे चरण में 11 चिन्ह हैं और बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं, ऐसे 19 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में अलग अलग। कोई शंख का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, त्रिकोण का चिन्ह है, इत्यादि बहुत सारे हैं। हो सका तो इस रविवार को भगवान के चरणों का वर्णन करेंगे कि भगवान के चरण चिन्हों का भक्ति में क्या महत्व है। जैसे अंकुश है, तो उसका भक्ति में क्या महत्व है, या जो शंख है इसका क्या महत्व है, तो ऐसे रविवार को वर्णन करेंगे। तो इस तरह भगवान के चरण चिन्हों के प्रति अब देवता प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो बड़ी सुंदर उनकी प्रार्थनाएं हैं जो प्रारंभ होती हैं 39वें श्लोक से। सबसे पहले वो उन्होंने भगवान के चरणों की तुलना कई चीज़ों से की। तो पहला वो तुलना करते हैं कि आपके जो चरण हैं वो एक छतरी के समान है। भगवान के चरण चिन्हों में एक छतरी भी होती है, एक चिन्ह वो भी है भगवान के दाहिने पांव में छतरी का चिन्ह होता है। तो वो तुलना करते हैं कि आपके जो चरण हैं, अब ये सारे देवता ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों का गुणगान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो आपके चरण चिन्ह हैं वो एक छतरी की तरह है। कैसे छतरी? जैसे जब बहुत तेज धूप होती है, वर्षा होती है, तो हमें उससे बचने के लिए हम छतरी लगा लेते हैं। तो हालांकि बड़ी तेज वर्षा हो रही है या बहुत धूप है, लेकिन हम उससे बच जाते हैं केवल एक छतरी के कारण। तो इसी तरह वो कहते हैं कि आपके जो चरण हैं वो एक छतरी की तरह हैं, कि ये जो भौतिक कष्ट हैं, दुख हैं, देवता कहते हैं इस जगत में सुख है ही नहीं। देखिए वो कब हैं, अभी ब्रह्मांड हुए नहीं, अभी शरीरों की रचना हुई नहीं, तभी उन्होंने घोषणा कर दी कि इस जगत में सुख है ही नहीं। लेकिन आपके चरण कमल उस छतरी के समान है कि उन दुखों में भी अगर उस छतरी का आश्रय लिया जाए तो जीव सुखी हो सकता। जैसे वो कह रहे हैं, मान लीजिए कि बड़ी तेज वर्षा हो रही है दुखों की, केवल दुख ही दुख की बारिश है, कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, लेकिन अगर कोई छतरी ले लेता है आपके चरण कमलों की तो फिर वो दुखों में भी रहकर भी सुखी रह सकता है, क्योंकि वो गीला नहीं होगा दुखों से, वो प्रभावित नहीं होगा दुखों से। तो इसलिए पहली तुलना वो करते हैं कि आपके चरण कमल एक छतरी के समान है। फिर वो वर्णन करते हैं कि आपके जो चरण हैं वो आश्रय हैं किसका, जितने भी पवित्र स्थान हैं, जितने भी पवित्र लोग हैं और जितनी भी पवित्र नदियां हैं, ये सब आपके चरणों में आश्रय लेते हैं, आपके चरण उनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो देवता अभी प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना करने से पहले भगवान की स्थिति, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आपके चरण कमल जिनका हम आश्रय लेना चाहते हैं वो क्या हैं। तो वो कहते हैं कि जितने भी पवित्र स्थान हैं वे आपके चरणों में हैं। तो पवित्र स्थान अर्थात ऐसे स्थान जहां भगवान ने लीला की है, जहां पर कुछ मंदिर बहुत पवित्र मंदिर हैं जिनके रहने से वो स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने लीला की, कोई कार्य भगवान से संबंधित, उसको पवित्र स्थान कहते हैं। जैसे कल भी हम लोग सुन रहे थे कि उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा। प्रभुपाद लिखते हैं कि चार महत्वपूर्ण धाम हैं, चार धामों की यात्रा करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं चार धाम हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। तो इन चार स्थानों का वर्णन, इनको चार धाम कहते हैं प्रभुपाद, कि ये चार महत्वपूर्ण धाम हैं, इनके हमें इन स्थानों पर जाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे चार धाम, तो इनको पवित्र स्थान कहते हैं। तो देवता कहते हैं जितने पवित्र स्थान हैं वो सब आपके चरणों में, और पवित्र लोग भी। तो पवित्र लोग कौन हैं? जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त क्या करते हैं? चरणों का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए जितने पवित्र स्थान हैं वो आपके चरणों में हैं, जितने पवित्र लोग हैं वो आपके चरणों में हैं, और जितनी पवित्र नदियां हैं, गंगा इत्यादि, वो भी आपके चरणों में हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान के चरणों से गंगा निकली हैं इस जगत में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो सारे भगवान के चरणों में आश्रय हैं। तो इसके द्वारा वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें भी शुद्ध होना है, जैसे पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थान हैं, पवित्र लोग हैं, तो हमें भी चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। और चरण कमलों का आश्रय किसके द्वारा ले सकते हैं? पवित्र लोगों के द्वारा, पवित्र स्थान के द्वारा, पवित्र नदियों के द्वारा हम भी भगवान के चरणों का आश्रय ले सकते हैं। अर्थात हम पवित्र स्थानों में जाएं, हम पवित्र लोगों से श्रवण करें और हम पवित्र नदियों में स्नान करें। या दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा में स्नान करता है, जरूरी नहीं है उसको पवित्र नदियों में स्नान करने जाने के लिए, लेकिन अगर वो भगवान की कथा में स्नान करता है, भगवान के कथा को एक स्थान पर बैठकर सुनता है, तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। जैसे जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी, तो वो कहां पर सुनी? बस गंगा के तट पर बैठ गए। वो तो कोई पवित्र स्थान उस समय नहीं था। आज हम लोग उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, सुखताल लोग दर्शन के लिए जाते हैं जहां सुखदेव गोस्वामी ने कथा कही, लेकिन उस समय तो कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, लेकिन वहां बैठ गए, कथा हो गई, वो पवित्र स्थान हो गया, वहां पर उन्होंने कथा कह दी। तो इसीलिए व्यक्ति को अगर नदी में स्नान करना है तो कृष्ण कथा की नदी में स्नान करना चाहिए। पवित्र स्थान में जाना है तो ऐसा स्थान, फिर वो कहीं भी हो, नरक में ही क्यों ना हो, जहां कृष्ण कथा हो रही है, वो हमारे लिए पवित्र स्थान है। और पवित्र व्यक्ति वो जो कृष्ण से संबंधित है, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, किसी जाति का क्यों ना हो, किसी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण का भक्त है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई भी हो, कि वो विप्र कीवन्यासी शूद्र केने नाय, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई भी होने दो, विप्र ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु है। अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो उससे हमें सुनना चाहिए, वो हमारे लिए गुरु है। तो इसलिए ये तीन चीजों का वर्णन देवता अपनी प्रार्थनाओं में करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों का ध्यान, केवल ध्यान करने से व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य आ सकता है, केवल चरण कमलों का ध्यान करने से। तो कैसे, इसको हम लोग रविवार को वर्णन करेंगे कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तो कहते केवल ध्यान करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है, क्योंकि भक्ति है ही ऐसी, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान का आश्रय, चरणों का आश्रय लेते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम, आशु यानी बहुत जल्दी, आशु का अर्थ होता है बहुत जल्दी, इसीलिए शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब जो आशु बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो जनयति आशु, जन यानी जन्म होता है, जनयति आशु अति आशु बहुत जल्दी, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट होते हैं। तो इसीलिए देवता प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण कमलों का ध्यान जीव को ज्ञान और वैराग्य, और ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है हमारे लिए। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो इसी को देने के लिए आए, इसीलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो वो ज्ञान और वैराग्य को देने आते हैं, अपनी भक्ति और अब ज्ञान वैराग्य उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। कृपां बुद्धि यस्तव हम प्रपद्ये, ऐसे भगवान की हम शरण जाना चाहिए जो यहाँ पर आए ज्ञान और वैराग्य को देने के लिए। ज्ञान भक्ति का ज्ञान, कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, हमें कैसे भक्ति करनी है, ये ज्ञान। और वैराग्य जो कुछ भी कृष्ण से अलग है उसको त्याग देना, वैराग्य का एक ही लक्षण है, जो भी कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको त्याग देना। जैसे भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में भी कहा था, पिछले स्कंद में हम लोग पढ़ रहे थे कि मुझसे जो भी अलग है वो माया है, भगवान ने कहा। तो जो भी कृष्ण से अलग है उसको त्याग देना, या दूसरी दृष्टि में हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में देखना, ये भक्ति है, ये वैराग्य है। हर वस्तु को, हमारे पास धन है उसको कृष्ण से संबंध में देखना, हमारे पास परिवार है उसको कृष्ण के संबंध में देखना, मान सम्मान है, समाज है, प्रतिष्ठा है, पद है, कृष्ण संबंध में देखना, ये वैराग्य। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको कहते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, कि जो कुछ भी है वो कृष्ण के संबंध में है तो वो युक्त वैराग्य है। अर्थात जो कुछ हमारे पास है उसको हम कृष्ण की सेवा में लगाएं, ये युक्त वैराग्य है। चीजों को त्यागे नहीं, वो फाल्गु वैराग्य है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि चीजों को त्याग देना कि ये सब दूर है, दूर है। प्रभुपाद ने किया, धन आता था तो प्रभुपाद ने क्या कहा, सन्यासी हूं धन को दूर ले जाओ? नहीं, प्रभुपाद ने कहा मैं दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कृष्ण की सेवा में लगाना। तो उन्होंने कुछ ये नहीं कहा मैं सन्यासी हूं स्पर्श नहीं करूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं, मौनी बाबा बैठे हैं, बोलेंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे धन को, तो फिर क्या करेंगे, उनके सेक्रेटरी ले लेंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं खुद तैयार हूं दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए। क्यों? कृष्ण की सेवा में। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कोई बाहर का दिखावा नहीं है कि मैं धन को स्पर्श नहीं करूंगा, मैं इसको ये नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, ये बाहरी चीज है। जो कुछ है कृष्ण की सेवा के लिए, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, वो सही वैराग्य है। चीजों को त्याग देना, अगर मेरे पास कुछ है मैं इसको त्याग देता हूं, नहीं, उसको भगवान की सेवा में लगाइए। धन है भगवान की सेवा में, जन है भगवान की सेवा में, बल है भगवान की सेवा में, ज्ञान है भगवान की सेवा में, कोई त्यागने की जरूरत नहीं है। हां, जो भी भगवान की सेवा में बाधा हो उसको त्याग देना चाहिए। तो इसीलिए इसको युक्त वैराग्य कहते हैं, और इस वैराग्य को हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो ये वैराग्य आता है ज्ञान से। जब हम भक्ति का ज्ञान लेते हैं, भगवान का ज्ञान लेते हैं, तब ये वैराग्य हृदय में आता है। कैसा वैराग्य? युक्त वैराग्य। तो देवता ये कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों पर केवल ध्यान करने मात्र से हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो सकता है, और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। झूठा वैराग्य जो ज्ञान पर आधारित नहीं है अहंकार को बढ़ाता है, सच्चा वैराग्य जो भक्ति के ज्ञान पर आधारित है वो नम्रता को बढ़ाता है। और भक्ति में नम्रता चाहिए। ऐसे वैराग्य को देखकर महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु र भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौरव भगवान। तो वो बाहरी दिखावे को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं वैराग्य को, कि कोई व्यक्ति बाहर से बड़ा दिखावा कर रहा है लेकिन अंदर कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं भक्ति के ज्ञान पर आधारित ज्ञान जनित वैराग्य, जिस वैराग्य से कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़े, जिस वैराग्य से हम सारी चीजों को कृष्ण के संबंध में देख सकें। हम वृक्षों को देखें तो कृष्ण की शक्ति माने, पर्वत को देखें तो कृष्ण की शक्ति माने, जल को देखें तो कृष्ण की शक्ति माने, कृष्ण का गुणगान करें कि हाँ ये देखो ये कृष्ण की शक्ति है। कौन से साइंटिस्ट ऐसा कर सकते हैं? ये केवल कृष्ण कर सकते हैं। ये भक्ति है। तो ऐसा वैराग्य हृदय में लाना चाहिए। तो वैराग्य दो तरह के होते हैं, झूठा नहीं सच्चा युक्त वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। जो चीजें हैं कृष्ण के लिए, मेरा शरीर है कृष्ण के लिए, ये युक्त वैराग्य है। आत्महत्या करना ये झूठा वैराग्य है, कि व्यक्ति सोचे नहीं मैं बड़ा वैराग्य, मुझे इस जगत से कुछ लेना देना नहीं, मैं सब कुछ छोड़कर आत्महत्या करता हूं, झूठा वैराग्य। सच्चा वैराग्य, शरीर में रहो, कष्ट सहन करो, शरीर को कष्ट दो भगवान की सेवा के लिए, ये सच्चा वैराग्य। तो ऐसे वैराग्य को देवता कहते हैं कि हम बड़ी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं केवल आपके चरणों पर ध्यान करके। और आपके चरण कमल क्या हैं, क्या देते हैं हमें? जब व्यक्ति ध्यान करता है तो बड़ी अच्छी तरह से वो बता रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वो एक छतरी की तरह हैं। तो छतरी की तरह हैं तो वो आश्रय प्रदान करते हैं, इसीलिए सभी तरह के लोगों को आश्रय लेना चाहिए। और पहले से ही आपके चरणों में पवित्र लोगों ने, पवित्र स्थानों ने, पवित्र नदियों ने आश्रय ले लिया है, तो सबको लेना चाहिए। तो आश्रय लेने की विधि क्या है? ध्यान करना चाहिए आपके चरणों पर, तो ध्यान करने का लाभ क्या होता है, अब वो बताते हैं। वो कहते हैं ध्यान जब व्यक्ति करता है तो आप क्या देते हैं उसे, दो चीजें देते हैं आप, एक स्मरण और एक शक्ति, दो चीजें आप प्रदान करते हैं, निर्भयता या शक्ति आप प्रदान करते हैं जिससे व्यक्ति के अंदर बल आ जाता है। तो ये दो चीजें आपके चरण कमलों पर ध्यान करने से हमें प्राप्त होती हैं, रिमेम्बरेंस भगवान का स्मरण और करेज शक्ति या बल। तो क्या है ये दो चीजें, रिमेम्बरेंस मतलब भगवान का जब स्मरण हृदय में आ जाता है हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसके लिए ज्ञान और वैराग्य प्रकट होता है। और उस ज्ञान वैराग्य का फल क्या है, असली फल वैराग्य का क्या है, भगवान का स्मरण सतत होना, यह सच्चा वैराग्य है। इसलिए गोपियां ये सर्वश्रेष्ठ वैरागी हैं, क्यों, सतत भगवान का स्मरण है उनको, और कोई चिंता नहीं है और कोई वैराग्य नहीं, और इसीलिए वे ऐसे ऐसे कार्य कर सकें जो किसी के लिए संभव नहीं है। उद्धव गुणगान करते हैं, आसा महो चरण रेन जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम। तो क्यों बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जो किसी के लिए संभव नहीं है। गोपियों ने जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो अपने पतियों को, अपने बच्चों को, समाज की चिंता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ त्याग कर उनके सामने चली आई, भगवान के सामने। ये भगवान का स्मरण इतना तीव्र है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की। तो ऐसा स्मरण, और स्मरण के साथ साथ क्या देता है, बल। आपका जो आपके चरण कमलों पर ध्यान का लाभ क्या है, व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। हमें बल चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, नहीं तो इतने आकर्षण हैं जो हमें खींच लेते हैं। हमें शारीरिक बल नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति को बहुत बलशाली होना चाहिए। आध्यात्मिक बल जो भगवान के चरण के स्मरण से आता है, वो बल से हम अपने आकर्षण को, जो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। वो बल हमें चाहिए, और वो बल मिलता है भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने से। नहीं तो जीवन के अंत तक, वृद्धावस्था तक केवल वो आकर्षण बने रहते हैं। एक बार अकबर और बीरबल की कथा है, बीरबल से पूछ लिया अकबर ने कि ये जो आकर्षण होते हैं भौतिक जगत के प्रति, ये कब तक बने रहते हैं। बीरबल ने कहा मृत्यु तक। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो एक दिन कोई एक वृद्ध व्यक्ति मर रहा था, बूढ़ा एकदम मरने वाला है। बस बीरबल ने कहा महाराज चलिए, वो व्यक्ति मरने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन चलते चलते आपकी जो लड़की है, युवती, उसको भी ले लीजिए। तो अकबर ने कहा उसको क्यों, बोले अरे ले लीजिए आप, देखिए फिर क्या। तो गए वो लोग, बूढ़ा पड़ा हुआ है मरने की स्थिति में, आंखें बंद हो रही हैं। बीरबल आए, कोई आंख नहीं खुली, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अकबर आए, कुछ नहीं। उनकी यंग लड़की आई, आंखें पूरी खुल गई बूढ़े। देखिए ये है, ये स्थिति है। जब तक व्यक्ति वैराग्य हृदय में नहीं लाता है, यही सब होता है। मर रहा है बूढ़ा, लेकिन फिर भी आसक्ति नहीं गई है, भोग से आसक्ति। तो ये सच है, कहने में तो एक चलो जोक की तरह हमने कथा उसको कह दिया हंसी मजाक में, लेकिन ये सच है। वृद्धा अवस्था तक आसक्ति नहीं जाती, मरने तक आसक्ति नहीं जाती, अगर हम इसका पालन नहीं करें, अभ्यास नहीं करें अभी से, इसी समय से। तो ऐसे ही होगा, मृत्यु तक हम लोगों को कोई आसक्ति छोड़ नहीं पाएगी। तो जो हमें किसका बल चाहिए, ये जो आकर्षण है, इनसे परे जाने के लिए बहुत बल चाहिए। और अगर सतत कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो वो बल प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि कृष्ण का स्मरण इतना आनंद देने वाला है कि फिर ये छोटे मोटे आनंदों में व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आप ऊंचे रस का आस्वादन करते हो तो फिर निचले रस में नहीं जाते हो। तो वो ऊंचा रस क्या है, कृष्ण भक्ति का रस। तो इसलिए ये जो आकर्षण हमें खींचते हैं अपनी ओर, हम भक्ति करना चाहते हैं, हम समर्पण करना चाहते हैं, अचानक एक दिन प्रवचन सुनते ये सोच रहे थे कुछ भी हो जाए कल से पूरा समर्पण, कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आधे घंटे बाद समाप्त, राइट? आधे घंटे बाद बोलते नहीं, कृष्ण तो हैं लेकिन घर परिवार भी तो है, वो तो प्रवचन में पता नहीं बोलने वाले ने क्या बोल दिया, वो तो दिमाग घूम गया, लेकिन अगली बार सोच के जाऊंगा। वहां जाके सब वही, क्यों, परिवार भी तो है, अरे थोड़ा धन भी तो कमाना है, थोड़ा आनंद भी तो लेना है, इस शरीर मिला भगवान ने दिया है, किस लिए दिया है, आनंद लेने के लिए दिया है, तो फिर थोड़ा आनंद भी तो लेना है, भगवान के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, सही है ना, भगवान ने शरीर दिया आनंद लो, कई बार लोग ऐसे कहते हैं। तो ये चीज है, सतत भगवान का स्मरण होगा तो बल मिलेगा, और उस बल से हम इन आकर्षणों से, क्योंकि ये भौतिक आकर्षण बड़े तीव्र हैं, जान लीजिए आप ब्रह्मचारी बन जाइए सन्यासी बन जाइए आकर्षण नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि दंडा हाथ में आ गया तो व्यक्ति के आंखों में से सारा आकर्षण चला गया, मरने तक नहीं जाता है ये आकर्षण। और इसीलिए इसका प्रमाण क्या है, यमुनाचार्य इतने महान सन्यासी, लेकिन वो जब श्लोक लिखते हैं यद अवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे, वहां पर बहुत सुंदर वही पदारविंद की बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जब से मेरा चित्त कृष्ण के चरण कमलों में लगा है तब तब नए नए रस का मुझे अनुभव हो रहा है, और अगर उस समय स्त्री संगे, अगर स्त्री का संग करने का विचार भी मन में आता है तो मैं उसके ऊपर थूक देता हूं। तो आचार्य टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यमुनाचार्य के मन में जब विचार आ सकता है तो फिर हम लोग कौन से, हिंदी में कहा जाता है कौन से खेत की मूली है इत्यादि कहा जाता है ना, तो फिर यमुनाचार्य जैसे आचार्य लिखते हैं, लेकिन विचार आता है वो जानते हैं क्या करना है, बेकार है। तो ये करेज है, ये बल है, तो उनको भगवान ने वो बल दिया है ये जानने का, लेकिन अर्थ क्या है, जब तक भौतिक शरीर है ये आकर्षण रहेंगे, लेकिन भगवान से लिए हुए बल से, भगवान के स्मरण से लिए हुए बल से हम उससे अलग जा सकेंगे। तो ये भगवान के चरण कमलों की स्मरण करने का फल भगवान देते हैं। और फिर वो कहते हैं, अभी तक उन्होंने कहा कि जो शरण लेते हैं उनका क्या होता है, लेकिन कौन शरण नहीं ले पाते आपकी, देवताओं अपनी अगली प्रार्थनाओं में वो कहते हैं कि कौन आपकी शरण नहीं ले पाते, तो ऐसे लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं ले पाते जो मैं और मेरा इसमें फंसे हुए हैं। बस जो मैं और मेरा में फंसे हुए हैं वो आपके चरण को देख भी नहीं पाते हैं, कैसे देखेंगे, क्योंकि सारा जीवन मैं और मेरा, मेरा परिवार। कभी कभी व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनने का अवसर मिलता है, लेकिन उसकी आसक्ति कहाँ होती है, अरे क्या होगा, मेरा परिवार, मेरा परिवार है, मेरी माँ है, दुनिया में लाखों माएं अकेली हैं, उनकी चिंता क्यों नहीं है, मैं और मेरा परिवार। तो वो कहते हैं जब तक व्यक्ति मैं और मेरा में रहता है आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं ले पाता। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि जो मैं और मेरा की भावना है यही हमें कृष्ण से दूर रखे हुई है, क्योंकि इन्हीं आसक्तियों में हम लोग लगे रहते हैं, भक्ति भी करते रहते हैं लेकिन अगर घर में कोई कष्ट हो रहा है तो हमें कष्ट हो जाता है, उन्हें वैसे कष्ट नहीं हो रहा है लेकिन मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरे बहू मेरा ये ऐसे कर रहे हैं इस कारण से कष्ट है, क्यों, आसक्ति है मैं और मेरा। दुनिया में कितने सारे पुत्र अपने पिता को कष्ट देते हैं, हमें उससे कष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर मेरे पुत्र ने कष्ट दे दिया तो सारा मैं और मेरा। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि चलिए किसी ने अगर गाड़ी खरीदी है, नई कार खरीदी है, तो नई कार लाकर उसने नीचे खड़ी की अपने घर के, रात को बड़ा दर्शन करके जाकर सोया, और सुबह आते ही उसने देखा कि वहां पर किसी ने पत्थर मार दिया या डेंट मार दिया, कुछ तो कर दिया, नई कार एकदम ब्रांड न्यू, तो क्या करेगा व्यक्ति, ना हंगामा करेगा, सारा मोहल्ला सारी बिल्डिंग नीचे बुलाएगा, किसने किया ये वो, और पता नहीं क्या क्या शब्द कहेगा, अभी हमें तो नहीं पता, जो हमारी कार को कभी डेंट लगा नहीं, तो हम और मान लीजिए यही चीज उसके पड़ोसी के साथ होती है, उसके पड़ोसी की नई कार पे कोई डेंट मारता है, तब जाके क्या कहेगा, छोड़ो क्या कार ही तो है ना, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, कार को डेंट लगा रहे क्या, ठीक है किसी ने मार दिया होगा, छोड़ो राइट। किसी के घर में मृत्यु हो जाती, हम लोग जाके क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, भगवान की योजना है, अब उसके सामने किसकी चलती है, अपने मृत्यु होती हाय 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 पूरा, तब याद नहीं आता कि भगवान की योजना है, उसके सामने किसी की नहीं चलती है राइट। क्यों, मेरा व्यक्ति मर गया, मेरी कार को लग गया, तो ये मेरा, ये मैं और मेरा, दूसरे की कार को हम लोग कितनी बार सुनते, कार एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे देखते भी हैं, हम चले जाते हैं, हाँ ठीक से चलाया नहीं होगा इत्यादि इत्यादि, चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारी कार को हो जाए तो देखिए हृदय टूट जाता है, द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू, हाय मेरी कार। तो ये जीवन है, इसको कहते हैं मैं और मेरा, और ऐसे ही होता है, हमने कई जगह देखा है, हम ऐसे भी देखा है उन व्यक्तियों को जिनके दूसरों के घरों में गए जब मृत्यु हुई और उनको सांत्वना दे रहे थे, और उन्हीं को रोते हुए भी देखा जब अपने यहां हुआ, तो ये मैं और मेरा है। अगर हमें रोना ही है तो रोज रोना चाहिए, कितने सारे लोग मर रहे हैं, क्यों नहीं रोते उनके लिए, कितने एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आतंकवाद में मारे जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, क्या हम लोग आंसू बहाते हैं उनके लिए, मेरा। तो ऐसे लोग कभी भगवान की, देवता कह रहे हैं, देखिए ये सारी बातें हैं देवता बता रहे हैं कि ये कभी भी वो भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंच पाते। वैसे देवताओं की प्रार्थनाएं और बहुत लंबी हैं, समय कम है इसीलिए संक्षेप में कहेंगे ये थोड़ा। तो फिर वो कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं भगवान के चरण कमलों का वर्णन करने के बाद, कि केवल शुद्ध लोग आपके चरण कमलों को देख पाते हैं, जो अपराधी हैं फिर वो अपराध का भी वर्णन करते हैं। ये प्रार्थना इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सुंदर है, किसी दिन इन प्रार्थनाओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक प्रार्थना महत्व। फिर वो कहते हैं अपराधी जो हैं वो आपको देख नहीं पाते, और फिर आगे गुणगान करते हैं भक्ति का, वो कहते हैं कि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, सबसे सरल मार्ग है भक्ति आपको प्राप्त करने का। देखिए देवता खुद कह रहे हैं कि ये सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जितने भी दूसरे मार्ग हैं वो सब कष्टदायक हैं, तो अगर आपको प्राप्त करना है तो केवल भक्ति, आपकी भक्ति हमें करनी चाहिए, वही एक सरल मार्ग है, और इसी के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और फिर अंत में वो प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमारे हृदय में ज्ञान दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए किस लिए, ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि भगवान से अगर हमें ज्ञान मांगना चाहिए तो किस लिए, देवताओं ने ज्ञान मांगा किस लिए, हमें ज्ञान दीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकें, बस ये प्रार्थना की देवताओं ने, कि आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो अंतिम श्लोक में वो दो चीजों की मांग करते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए, पूर्ण ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या समझा रहे हैं देवता, कि अगर हम कुछ मांगे भी तो भगवान की सेवा के लिए, और अगर हमारे पास कुछ है तो वो भी भगवान की सेवा के लिए। तो देवताओं ने कहा कि आप हमें ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए, और इसके द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। तो ऐसी प्रार्थनाएं देवताओं ने की, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, और इसके आगे फिर अगले अध्याय में आगे सृष्टि का, रचना का आगे वर्णन, विश्वरूप का वर्णन किया जाएगा छठे अध्याय में, कि कैसे भगवान के, बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है कि भगवान का जो विश्वरूप है उसको एक एक स्थान को कौन से देवता उसको उसके ऊपर हैं या उसके अधिष्ठाता हैं, और उनसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे हमारी जो बोलने की शक्ति है वो भगवान के विश्वरूप के किस स्थान पर है, उसके कौन अधिष्ठाता देव हैं, इन सब का वर्णन किया जाएगा। तो फिर ऐसे ये वर्णन प्रारंभ चलता रहेगा करीब 11वें अध्याय तक, सृष्टि की रचना। बारहवें अध्याय में विसर्ग की रचना होगी, और विसर्ग की रचना जब होगी तो कैसे अलग अलग शरीर प्रदान किए, अलग अलग लोग आए, और तब फिर वराह रूप की कथा, वराह भगवान की कथा, उनकी लीला 13वें अध्याय से प्रारंभ हो जाएगी।